ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और विस्तार देते हुए 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का दायरा बढ़ाएंगे। इससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का शुभारंभ करेंगे। वे भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक आईटी और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला एक अस्पताल शामिल है। वे मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली में 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल होंगे और कई अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के दंत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और रेफरल संस्थान, मस्जिद मोड परिसर में केंद्रीय स्टेराइल सप्लाई विभाग और मस्जिद मोड परिसर में जन औषधि केंद्र शामिल है। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिवों के साथ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के व्यापक बदलाव और बहुमुखी विकास का दौर देखा है। विकास के इसी दौर में सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ, जिससे किसान समृद्ध हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वे सौराष्ट्र, कच्छ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोतार जिलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विकी विमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणा की है, जहां उसके छोटे सहयोगी दल अपना उम्मीदवार उतारेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कलिना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, युवा स्वाभिमान पार्टी बडनेरा से चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रीय समाज पार्टी गंगाखेड़ से और जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार साहूवाड़ी सीट से चुनाव लड़ेगा। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए 805 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के महानिदेशक के सतीश नंबूदरी पाद ने कल गंगटोक में प्रेस सूचना ब्यूरो और आकाशवाणी के प्रचार और पहुंच की समीक्षा की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर को तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। भारत ने कल AFC अंडर 17 फुटबॉल एशिया कप 2025 क्वालिफायर के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मतलब भारत को अगले दौर में आगे बढ़ने के लिए अपने ग्रुप के मैच के नतीजों का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।